कृष्णा पुण्याश्रवणकीर्तनाः हृदयन्तोऽस्तो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके निरन्तरश्रवतु भागवतम् स्कंध 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 41 और 42। मैं 41 स्वयं पाठ करूंगा और 42 नंबर श्लोक हम सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। क्वचित् स्नातानुलिप्तांगः सुवासः स्वत्प्रलंकितः रथे भाश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रह विभो। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ, फिर मैं राजा की तरह हाथी के पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए गए व्यक्ति के समान नग्न फिरता रहता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? दत्तात्रेय भगवान। किसको बोल रहे हैं? प्रह्लाद महाराज, उनको स्वामी संबोधन करते हैं। अभी हम साथ में पाठ करेंगे श्लोक। नाहं निंदे न चह स्तोमि स्वभाव विषमं जनम् एते संश्रेय आशासे औते कात्म्यं महात्मनि। करता हूँ ना तो च भी होमि प्रशंसा करता हूँ। स्वभाव जिसका स्वभाव विषमम विपरीत, जन्म जीव या मनुष्य का, एतेषा उन सब का श्रेय सर्वोत्तम लाभ व कल्याण, आशा से मैं चाहता हूँ उत निस्संदेह एकात्म्यम एकात्मता महात्मनि परमात्मा या परम ब्रह्म श्री कृष्ण में। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। विभिन्न व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतः उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरे कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनकी कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगी। तात्पर्य, जो ही मनुष्य भक्ति योग की पद तक पहुंच जाता है तो ही वो भली भांति जान जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जीवन की लक्ष्य है। वासुदेवम सर्वमेति समहात्मा सुदुर्लभः। समस्त वैदिक साहित्य का यही आदेश है, वेदेश सर्वे रहमेव वेद्य। वैदिक साहित्य में भगवत गीता में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। किसी के भौतिक गुण के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुण के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छा तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता। एक अच्छा व्यक्ति उच्च लोक को जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जा सकता है। विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी नीचे गिरा दिए जाते हैं, किंतु ये जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रतितु वो कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी बने, जो जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग सुन रहे हैं एक साधु पुरुष के साथ प्रह्लाद जी संगलाप कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, पीछे वाले लोग सब खड़े हैं। ऐसे साधारणतया देखा जाता है कि एक व्यवसायी एक अच्छे व्यवसायी के साथ संबंध रखता है, एक चोर चोर के साथ संबंध रखता है। उसी प्रकार एक साधु पुरुष एक साधु के साथ संबंध रखता है, उस साधुत्व को बढ़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं सत्संग। और शास्त्र में मनुष्य जीवन की उपलब्धि के लिए ये सार वस्तु कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संग सर्वे सिद्धि। पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करो। सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ, आगे भी नहीं सुनाई पड़ रहा। भवेनापि क्षणार्धेप न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत भक्त संगस्य मर्ति हरि बोल। इस माइक का नाम क्या है पता है संस्कृत? इस माइक को संस्कृत शब्द में क्या कहते पता है? घटोत्कच शब्द। क्या? घटोत्कच। जानते ना घटोत्कच के नाम सुने? इस माइक को संस्कृत में कहते हैं घटोत्कच वाणी, तो इसके आवाज में इसे आता है। थोड़ा एडजस्ट कीजिए ताकि श्रोताओं को थोड़ा सुनाई पड़े। बहुत आवाज भी करता है, मुझे भी डिस्टर्ब करता है। पीछे आता है आवाज? देखो सब हाथ हिला रहे हैं। एक्सपर्ट है घटोत्कच वाणी को समान करने वाले कोई एक्सपर्ट है तो व्यवस्थित कीजिए। ओके, अभी ठीक सुनाई पड़ रहा है? आगे पीछे नहीं? लिटिल बेटर। तो ये सिद्ध पुरुष, हाँ, एक सिद्ध पुरुष को संगत चाहता है। ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं कामी नाम जोशितम संगी, कहते हैं जो कामी व्यक्ति है वो स्त्री का संग चाहता है। तो एक धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति का संग चाहता है, एक व्यापारी, व्यापारी का संग चाहता है। तो उसी प्रकार एक भक्त, एक संत तो दूसरे संत व भक्तों के संग चाहता है। संग छड़ा करण, तो सत्संग में रहने से हमारी मन व हमारी चित्त सबकी प्रति आकर्षित होता है। ये भगवान कहते हैं कि पहले ये सबकी अन्वेषणा करने के लिए उसके भाव को देखना चाहिए, सद्भाव फिर साधु भाव। तो इसी प्रकार प्रहलाद जी ढूंढ रहे थे किसके इसे स्वभाव है, जिसे कहा जाता है एक सोनारी सोना को पहचान जाता है। तो उसी प्रकार एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान जाता है, उसके स्वभाव को देख करके, उसके हाव भाव स्वभाव व्यवहार सबको परख लेता है। लेकिन ऐसे लगता है कि कभी कभी संतों की स्वभाव विषम प्रतीत होता है। भगवान की स्वभाव को भी कभी कभी विषम जैसे प्रतीत होता है, भक्तों के स्वभाव भी इसे विषम प्रतीत होता है। ऐसे कहते कल्प तरु स्वभाव, जब भगवान बड़ी महाराज से तीन पद उनकी याचना करते हुए सब कुछ हर लिए, तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चक्कर खा गया। अरे कहे अरे प्रभु, आपको तुलसी दल जल मात्र से आपको संतुष्ट कर देते हैं भक्त, और ये बड़ी ने सब कुछ आपको दे दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर आपको कैसे बांध दी? कहते विषम स्वभाव, आपकी स्वभाव ऐसे प्रतीत होता है विषम है, आप उल्टा करते हो, सीधा करो, ये भाव तो अच्छे नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सचमुच आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वेद पढ़ते पढ़ते आपका बुद्धि थोड़ा से मोटा हो गया, बैठ गया, आप नहीं जानते हैं मैं भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, बाहर को ऐसे प्रतीत होता है। तो ऐसे एक सिद्ध पुरुष कभी कभी ऐसे आचरण करता है ताकि साधारण लोग उनकी आचरण आचरण को समझ नहीं पाते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते ये कैसे व्यवहार है। तो इसलिए मनुष्य के स्वभाव को समझने के लिए बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, प्रज्ञा को धीर करना चाहिए, इसलिए कहते स्थित प्रज्ञा। भगवान स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का लक्षण बताते हैं। हमारी प्रज्ञा कब उल्टा सीधा हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, कब होता है? स्नेह उत्पन्न होने से, किसकी प्रति? आकर्षण। और आकर्षण से भी द्वेष होता है। जिसके प्रति अभी हम प्रेम करते हैं तो कुछ समय के बाद उनमें हम दोष भी देखते हैं, कभी हमको गुण दिखते हैं, कभी दोष दिखते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं वो व्यक्ति स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कौन है? जस सर्वत्र नभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदन्ति न दोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम लोग को यदि कोई प्रशंसा कोई कर दे, अरे भाई देखो सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है कि नहीं, हम फूल जाते हैं। और हमारे कोई निंदा किए तो हम तुरंत उससे गुस्सा करते हैं। तो भगवान कहते ना दोष्टि न अभिनंदन, उसकी प्रशंसा करते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस टीका में कहते हैं, कहते यदि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञा नहीं है, उसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, उसकी प्रशंसा करने से इतनी फूल जाता है। और कहता है कि आपकी समान ऐसे महत्पुरुष को ये संसार में नहीं है, और आपके समान कोई गुणवान नहीं है, और मेरी आशीर्वाद हमेशा ही आप पर है, आपका गुण ऐसे है। और यदि कोई ऐसे आपकी निंदा करता है, तो यदि कोई निंदा कर दे, तो यदि उसका प्रज्ञा बुद्धि स्थिर नहीं है, तो यदि वो ब्राह्मण भी हो तो जैनी खोल करके उसको साफ देता है, तुम नरक गामी हो जाओ, तुम्हारा पितृपुरुष सब नरक में गिर जाए, तुम्हारा धन सब नष्ट हो जाए। तो इसी प्रकार हम जब मान सम्मान प्राप्त करते हैं तो हमारी मन खुल जाता है, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। तो भगवान यहाँ सतर्क करते भाई, ऐसे भाव रखने से आपका प्रज्ञा स्थिर नहीं रहेगा, ना आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, ना आप जोग में स्थिर हो पाओ। तो हमारे जो कृष्ण भवनामृत हैं, आज जो जोग के विषय में अभी शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या है? हमको जोग में रहना चाहिए, ना मान की भोग में, ना अपमान की भोग में। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जोगस्तम कुरु कर्माणि संगं तत्वा करोति च, संगं तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समं भूत्वा समर्थं योगमुच्यते। हम लोग का आदत पड़ी है कि कुछ कमाएं, क्या कमाएं? धन कमाएं, मान कमाएं, जन कमाएं। इसलिए भगवान यहाँ पर धनंजय शब्द से उनको संबोधन करके कहते हैं धनंजय तुम जोग में स्थिर रहो, मेरी प्रति भावना को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? ना जोग में स्थिर रहकर ही कर्म करो, जोगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय। और उससे आपका कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है, कुछ मान मिल सकता है, कुछ अपमान मिल सकता है, परंतु इसमें विचलित नहीं होना चाहिए, कर्म की प्रति ध्यान रखना चाहिए। और प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिखते हैं कि वो साधु पुरुष ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि देखो ये मान सम्मान आता और जाता है, आगामा अपाइनो तांग तिथिक्ष सुभारत। इसलिए मान को भी सहन कर लो और अपमान को सहन कर लो, तो फिर बुद्धि समता में रहेगा। जब तक बुद्धि समता में नहीं है तो हम लोग जोग में स्थित नहीं है। भक्ति तभी शुरू होती है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। उत्तमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परम भक्ति। हम लोग की इच्छा रहता है पॉजिटिव प्राप्त हो, परंतु मिलता है हमको उल्टा, इसलिए हमारी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। लेकिन समत्तम योग उच्चते, समता रहने से ही इसको योग कहते हैं। और हमारे किसकी प्रति ममता है? हमारे राग की प्रति ममता। राग मतलब जो हम चाह करते हैं वो राग। तो सिद्ध पुरुष यहाँ कह रहे हैं कि देखो, ये संसार में मैं भी कभी कभी ऐसे आचरण करता हूँ। हाँ, क्या करता हूँ मैं? कभी कभी मैं अपने शरीर को बहुत श्रृंगार करता हूँ, राजकीय वस्त्र पहनता हूँ, इत्र लगाता हूँ, फूल माला धारण करता हूँ, और घोड़ा हाथी व कभी कभी रथ पर बैठ करके जाता हूँ। तो लोग सोचेंगे, देखो ये कितने बड़े भोगी हैं, कहता है बड़ा महात्मा है। हाँ, लिखा है पपटराम आश्रम है और पूरा सामने राजस्थानी मार्बल से पूरा बना हुआ है आश्रम। गोवर्धन में एक आश्रम है, लिखा है पकटराम, मतलब पकटराम तो सही। तो कभी कभी हम देखते हैं, हमारे मथुरा में एक मंदिर है, वो कौन सा मंदिर मैं बोलता हूँ, ध्रुवटीला के पास, और जो उनके महंत हैं वह अनुजाई हैं, वो सब बोरे पहनते हैं, बोरा पहनते हैं, देखें वस्त्र नहीं, वो झूठ का जो बोरा है, आलू बोरा है, उसको पहनते हैं। तो परम पूज्य राधामोहन महाराज के साथ हम लोग गए थे राजस्थान कथा के लिए, उस समय जाट लोग आंदोलन कर रहे थे, तो लोग पास दो गाड़ी, तीन गाड़ी था, मैं दो गाड़ी था, वृंदावनचंद महाराज जी थे, राधारमन महाराज जी थे, और थे दो तीन बॉम्बे के माता जी थे। नहीं, आवाज नहीं आ रहे, देख क्या करें। तो वो स्ट्राइक किए थे, तो हम लोग फिर दूसरे रास्ते में जाना पड़ा, आते समय पे ऐसे हुआ। तो आते समय वो देखे कि एक पूरा लंबा लाइन गाड़ी में लगा हुआ है, और सभी गाड़ी का, जैसे हमारे इंडिया में दाहिने तरफ होता है स्टेरिंग, लेकिन उस गाड़ी में सब बाएं तरफ था। तो कोई भक्त उतर कर देखा, ये तो विदेशी गाड़ी है, तो कौन लेके आए हैं? जो बाबा बैठे हुए हैं उसके रेड लाइट के ऊपर। तो महाराज कहे कि यही है त्याग के लक्षण है, कि संसार को हम जितने त्यागी दिखाएंगे तो उतना हमको भोग मिलता है। तो त्याग और भोग के बीच में होता है जो ना, भक्त कभी ना त्याग करता है ना भोग करता है, बल्कि जो कुछ मिलता है वो भगवान की सेवा में जोग करता है। इसलिए भगवान कहते हैं चुप स वैराग्य उच्यते प्रपंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुना विमुख्य परित्यागी वैराग्य फलकते अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपजुञ्जते निर्बन्धे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इस वैराग्य को चुपता कहा जाता है। कौन सी वैराग्य? निर्बंध कृष्ण संबंध। ये वस्तु किसकी है, ये किसकी कमाई है, किसकी बाप का है? जब हम प्रश्न करें तो उत्तर आता है इस्यावश्यम इदं सर्वं तत्किंचित् जगत्यां जगत्। जगत में जो कुछ देखते हैं ये सारी वस्तुएं भगवान की है, और उतनी चीज हमको ग्रहण करना चाहिए जो हमको भगवान ने अपने हिस्सा के रूप में निर्धारित की, और उतने वस्तुओं को प्राप्त करके हम लोग संतुष्टि रहना चाहिए। क्योंकि योग की एक टेक्निक है, एक कला है, वो है संतुष्टि। जो जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसकी जोग भंग हो जाता है। संतुष्टम सततम जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मन बुद्धि जो मत भक्त समय प्रिय। जिसकी मन भगवान में लगी हुई है वो जोग में स्थिर है और मई अर्पित नहीं है, भगवान का भगवान में यदि मन अर्पित नहीं है तो हमारी मन इस प्रकार निंदा और प्रशंसा से विचलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वो सिद्ध पुरुष कहते नाहं निंदे न चस्तोमि स्वभावं विषमं जनम। क्योंकि मनुष्य का जीव का स्वभाव विषम है। विषम का मतलब है जो सम नहीं है वो विषम है, और दूसरा अर्थ है जो बीज से युक्त है इसको कहते विषम। नहीं समा व विषम है और बीज से युक्त है। कभी कभी पुतना जैसे वो लक्ष्मी की रूप धारण करके आती है तो ब्रजवासियों के मन में एक ऐसी भूल फेंकी चौंक डाल दी कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है और उनकी कितनी स्वागत की, अरे अरे आइए माता जी आइए, कितने सुंदर वेश बना करके आई, हाथ में कमल पुष्प धारण करके आई और ऐसे पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर से वो अपने को सजावट की थी, लेकिन हृदय में तो पूरा जहर भरी थी। ओहो बकीयम तनकाल कूटम, और इसकी आशा क्या था, जिघांसयाप्या अश्वाधवी। जिघांसया मारने की इच्छा लेकर के आई थी, यद्याप्य अश्वाधवी, परंतु भगवान तो विषम नहीं है ना, उनकी हृदय उनकी मन उनके शरीर ये सब एक समान है। भगवान के पास सम बुद्धि है। भगवान कहते समहं सर्वभूतेषु न मे दोषी अस्ति न प्रिय, मेरे कोई ना प्रिय है ना कुछ मैं दोष करता हूं, मैं सबके प्रति समान। मेरे पास इंटरनल और एक्सटर्नल समान है, उनके इंटरनल एक्सटर्नल कुछ विषम हो सकता है लेकिन मैं तो सम हूं ना। तो इसलिए वो जो रूप लेकर के आई थी भगवान ने उनको स्वरूप प्रदान कर दिए। लेभे गतिर धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजे। ऐसे कौन दयालु है, ऐसे किसकी स्वभाव होगा संसार में, बड़े बड़े देवता भी मान सम्मान में रिझ जाते हैं और थोड़े से भी उनकी सेवा पूजा में कुछ त्रुटि हो जाते हैं तो उसी प्रकार वो कुपित होकर सबको नष्ट करने के लिए चाह करते, जैसे इंद्र आदि पूरा ब्रजवासियों को मारने के लिए ब्रज को नष्ट करने के लिए वो उतर पड़ा। आप देखो इतनी वर्षों तक उनकी सेवा किए थे उनकी पूजा किए थे, एक बार भी सोचा नहीं अरे छोड़ो एक साल बंद कर दिए तो क्या हो गया, इतने साल तक तो मैं किया तो घी पिया था और उनकी पकौड़ा खाया था, राबड़ी मक्खन मिस्टी सब मुझे देते थे, परंतु उनके अंदर कोई दया नहीं, कितने निर्दय हैं। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि इससे कौन कौन देवता हो सकता है, कौन महापुरुष हो सकता है। तो भगवान के पास ये समता है और इस समता को भक्त भी प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है, भगवद गीता में है भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार गुण उनके पास आ जाता है। कैसे आता है बोलिए, स्थितो मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव ते जितः सर्ग, जिन्होंने सर्गों को जीत लिया है सृष्टि और अवैव सृष्टि से ही विभिन्न रूप और नाम लेकर के प्रकट होता है, हम किसकी सुंदरता देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, किसकी कुरूपता देखते हैं तो घृणा उत्पन्न होता है। तो सृष्टि के अवयव को देखकर कि हमारी दृष्टिकोण बदल जाता है। परंतु जो न दृष्टि न कांक्षति, अच्छे चीज को देखकर कि जो आकांक्षा नहीं करता है और बुरे चीज को देखकर कि जो घृणा नहीं करता है, वो सृष्टि के अवयव को वा स्वर्गों को जीत लिया है। यह बाते जित स्वर्ग जे संसार में स्थितं मनः, उसकी मन समतान है और वो व्यक्ति वो निर्दोष हो जाता है। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है क्योंकि ब्रह्म में ही एक रूपता है। ब्रह्म में सगुण व निर्गुण भेद नहीं है, ब्रह्म एक रूप है। और यदि हम एक को समझ ले तो हमारे अंदर दैत्यता प्रकट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं जस सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनन्दन्ति न दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीरिमनिरुच्यते। ये राग वीत करता त्याग देता और इनकी सब इंग्रेडिएंट है, एक के बाद एक उत्पन्न होता है। भय जो उत्पन्न होता है, क्रोध होता है। हमारे दिल्ली में मतलब एक समझने की बात में कह रहा हूँ, उपहास के लिए नहीं। एक भक्त की उसकी पत्नी ने कोर्ट केस किया और डाइवोर्स कर दिया। तो दूसरे पुजारी था, वो बहुत डर गया। तो उसको कोई पंडित जी बोल दिए कि देखो जो पारिवारिक जीवन को रखना है तो शनि देव की पूजा कर लो, शनि ग्रह नहीं चलेगा। तो उन्हें हर शनिवार को 5 किलो सरसों तेल लेके आता था कुकिला बन, क्योंकि इसकी इतनी राग था पारिवारिक जीवन के प्रति। तो भगवान की उपासना को छोड़ करके उन्होंने शनि देव की उपासना की। गाड़ी में आते थे तो राग होने से भय भी उत्पन्न होता है, वो चीज हमसे न चल जाए। तो हम लोग महाभारत में भी सुने हैं कि भीष्म देव के पिताजी का नाम क्या था, कौन बता सकता? शांतनु। क्या किस लिए उनका नाम पड़ा शांतनु? हाँ, उनका नाम क्या क्यों पड़ा शांतनु? नहीं, आप लोग भागवत में पढ़े हैं, 9 मास्कंद में है। शांतनु क्यों पड़ा उसका नाम? कि वो जिस पर हाथ रख देते थे उनकी काम क्रोध भय लोभ सब कुछ शांत हो जाता था, इसलिए उनका नाम था शांतनु। परंतु सोचिए, उन्होंने उस गंगा जी जब त्याग करके चल गए तो उस गंगा तट पर उन्होंने बहुत अशांत होकर के विचरण करते थे। पितामह भीष्म ने, जिनका नाम था देवव्रत, तो देखते थे कि पिताजी प्रतिदिन आते हैं बहुत विषाद मन में, जबकि उनके नाम था शांतनु, उनकी गुण भी पता था, और पिताजी क्यों अशांत थे? और इतना बड़ा वो महापुरुष थे, जब देवव्रत ने इसी प्रकार सब कुछ उत्सर्गीकृत कर दिए, सैक्रिफाइस किए पिता के लिए, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किए कि मैं विवाह नहीं करूंगा पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु की वरदान दिए, तुम्हारा जब इच्छा होगा तब से तुम्हारा मौत होगा। इतने बड़े महापुरुष, महापुरुष तो दूसरे की कल्याण करते हैं लेकिन अपने कल्याण के विषय में सोच नहीं पाते हैं। ऐसे विषम स्वभाव हो गया। तो कहने के मतलब है कि भौतिक संसार के जो संसर्ग हैं, ये सब कोई झोंक देता है। इसलिए कहते हैं ये जो किसी के गुण देखकर कि हम आकर्षित हो जाते हैं और किसी की गुण में हम दोष बुद्धि भी करते हैं, तो दोनों प्रकार ही हमारे मन में क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होता है, इसको राग द्वेष। तो ये ही गुण को हम देख करके उस गुण से बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण किसकी है, ये गुण तो माया ने दिए, दई भी है सी गुणमयी मम माया, ये माया ने इस गुण और दोष की रचना की है। अगर हम किसकी गुण के प्रति आकर्षित होते हैं और किसी की कमी देख करके उनसे हम द्वेष करते हैं, तो दोनों ही माया के बंधन के कारण है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की एकादश स्कंध में भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि दूसरे की गुण देखकर की प्रशंसा करना और उनके दोष देखकर की निंदा करना, ये ही सिद्धि पथ में बहुत बड़ा अंतराय है। और उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, कथा सुनाई। कौन सी कथा है कि मन को कैसे स्थिर करना है आत्म तत्व में, अवंती ब्राह्मण की। अवंती ब्राह्मण आप लोग सब तय जानते हैं कि जो भागवतम पढ़ते हैं, वो अवंती, अवंती कहाँ, उज्जैन, उज्जैन की। तो ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, धन तो बहुत कमाया था, तो पहले अपने धन से वो यज्ञ आदि करता था, देवताओं को संतुष्ट करता था, दान पुण्य करता था। परंतु एक दिन उसके मन में आया, अरे सब धन में बेकार, मेरी मेहनत की कमाई है, इसको सब मैं व्यर्थ गवा देता, इसलिए किसी को भी एक कौड़ी भी नहीं दिया, ना ही अपने घर वालों से, तो ना यज्ञ कर रहा था, वो भी यज्ञ बंद कर दिया। तो फिर परिणाम क्या हुआ, ना उसकी जो धन था कुछ ऐसे दैव की प्रकोप से नष्ट हो गया, हाथ लग गया, कुछ नष्ट हो गया, तो कुछ धन चोर ने चोरी कर लिए, और रिश्तेदार जो थे अपने स्वजन संबंधी थे, वो सच्ची थे, बड़ा कंजूस हो गया, वो भी उनको छल करके कुछ धन ले लिए, और कुछ सरकार ने भी ब्लैक मनी के नाम पर वो सब टैक्स लगाए, हाँ तो वो भी सरकार भी ले लिया। तो फिर बड़ा दुखी हो गए और अपने जीविका निर्वाह के लिए उन्होंने परिवार लोगों को तो मदद नहीं किया था, पहले तो जो मदद किया था लेकिन अभी नहीं किया लास्ट में, इसलिए परिवार लोग भी उसका घर से निकल जाओ, तो बूढ़ा बैल जैसे हो गया। तो बेचारा अपने जीवन निर्वाह के लिए वो फिर बहुत दूर जाकर की भिक्षाटन करने लगा। तो कुछ लोग पहचान गए, अरे ये तो यही था, ये ब्राह्मण बहुत धनी था, और उसकी परिवार लोग सब उसके धन छीन लिए, और ये व्यक्ति फिर धन कमाने के लिए कि दूसरे एक उपाय ढूंढ लिया है। तो ऐसे कुछ लोग उनकी निंदा करने लगे और कुछ लोग उनकी पर दया भी दिखाए, कुछ भिक्षा देते थे, कुछ दान देते थे, कुछ खाने पीने की वस्तु देते थे, तो दूसरे लोग उनसे छीन करके ले लेते, और कोई कोई उनके पर पत्थर भी फेंकता था, कोई लाठी में आकर के पीट देता था, और मानो दैव बस उनको कुछ भोजन मिल जाता तो एक उन्होंने व्रत लिया था, एकांत में जाकर एक सन्यासी को जैसे गांव के अंतिम क्षेत्र में बैठकर के स्नान करके एक बरगद के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। तो इसी प्रकार वो भोजन करते हैं, तो उस समय दूसरे बच्चे जाकर के उनकी भोजन की थाली पर पेशाब कर देते हैं, उस पर धूल फेंक देते हैं, कभी कभी बिष्टा भी गिरा देते हैं। लेकिन उन्होंने एक व्रत लिया था, क्या व्रत लिया था, मैं कुछ किसी को प्रतिवाद नहीं करूंगा, कुछ चुपचाप रहते भारत, हर परिस्थिति में वो सहिष्णु बने रहे। तो फिर प्रश्न करेंगे, ये सहिष्णु गुण कैसे आया उनकी पास, मन में कैसे समता को लाए, ये दूसरों के व्यवहार से, ना वो कभी रिश्ते थे, ना किसके पर क्रोध करते थे। तो उन्होंने लास्ट में कुछ स्टेटमेंट दी, जैसे रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखे थे, उसी प्रकार भगवान को प्रेम करने के लिए उन्होंने एक प्रारंभिक, जिसको हम कहते मुखबंद, ये पत्र लिखे। और उस पत्र में ये था कि ये जो लोग हैं ये मेरे दुख के कारण नहीं है। नायम जनोए सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालम। तो फिर कौन है? ये ग्रह नहीं है, कर्म नहीं है, काल नहीं है, ये लोक भी नहीं है, ये मेरे सुख दुख के कारण है। कौन है? मन परम कारण मनंती, इसके एकमात्र कारण ही मेरी मन है। संसार चक्रे परिवर्त एचत, ये संसार एक चक्र है, कभी लटरे लग जाता है चक्र में तो हम बहुत कहते हैं हमारा बहुत फायदा हो गया, और कभी चक्र घुरते घुरते धन सब खत्म हो गया। इसलिए इस मन को शासन करना बहुत कठिन है। दस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करः, परंतु इस ब्राह्मण ने किस प्रकार अपने मन को संजत किया, इसलिए कह रहे हैं कि देखो तब तक मेरी मन स्थिर नहीं होता, लेकिन मुझे एक उपाय मिल गया। ये सब कोई नहीं कारण है, सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान। तो इसी प्रकार मन को समझाते हुए उन्होंने लगभग 43 से लेकर की 58 तक 16 श्लोक ये पत्र लिखकर की अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, एतं स आस्तायः परात्मनिष्ठा, मैं परम ब्रह्म में मैं अपने चित्त को स्थिर किया, ये सब समझ गए, ये कोई मेरी कारण नहीं। अध्यासितं पूर्वतमेर महर्षि, बड़े बड़े महर्षि योगी जन महात्मा जन जिस प्रकार अपने मन की आस्था रखे भगवान की, तो हमारे इंडिया में एक चैनल चलता है आस्था, चलता है कि नहीं, आस्था के साथ भी संस्कार भी देते हैं। तो इस प्रकार मन को संस्कार करना चाहिए, फिर भगवान के ऊपर आस्था रखना चाहिए। संस्कार इसको कहते हैं, हम कहते ना परिष्कार, तो संस्कार सम्यक्कार मतलब उपचार करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन को संस्कारित करके ये किए, अध्यासितं पूर्वतमेर महर्षि, बड़े बड़े महर्षि सिद्ध पुरुष जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर चलने के लिए अपने मन को स्थिर कर लिए, ये है आध्यात्मनिष्ठा। और ये विचार किए ये संसार को तरना है, ये संसार सागर को तरने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि एक सुंदर नौका की आवश्यकता है। वो ये संसार सुंदर नौका क्या है? अहंतरिष्यामि दुरंत पारम तमा मुकुंदं ग्रीनिसे वैव, मुकुंद के चरण कमल को आश्रय लेना चाहिए। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्यम जसो मुरारी, भवाम्बुदि वत्स पदम परम पदम 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 विपदम न देशम। उनके लिए संसार में कोई दुर्घटना व दुर्गति नहीं होती है, जो समाश्रित है जिस चरण कमल की नौका को आश्रय ले लिया है उनके लिए कोई विपत्ति नहीं है। तो विपत्ति और संपत्ति क्या है? रामचरितमानस में कहते हैं उसको हम विपत्ति मानते हैं जिस समय मन भगवान के चरण में नहीं लगता है, उसको विपत्ति कहते हैं। और संपत्ति वही है यदि मन भगवान के चरण में लग गया है, तो ये संपत्ति। तो इसलिए ये जो सिद्ध पुरुष है दत्तात्रेय ने जो उपदेश दिए कि संसार सागर को तरने के लिए एकदम सरल सहज उपाय है, ये संसार की जो दैत्यता है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी मान है कभी अपमान है, कभी गर्मी है कभी ठंडी है, कभी धन है कभी निर्धन हम बच हो जाते हैं, लेकिन इस द्वंद से निकल करके हम निर्द्वंद को जाना चाहिए। गीता में यही कहते हैं कि जो भगवत धाम जाना चाहते हैं ये सब द्वंद्व से निकलना चाहिए। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्त मूढ़ा पदमाभयं तत्। जिसकी उस अभय पद को प्राप्त करने के लिए चाह है लक्ष्य है, तो ये जो संज्ञा है आज सुख है आज दुख है, ये तो सब मात्रा से उत्पन्न होता है। मात्रा स्पर्शस्तु कुंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायन नित्यम तांग तितिक्ष सुभारत है। अर्जुन तुम इसको सहन करने की सीखो, ये केवल स्पर्श से उत्पन्न होता है। आज बारिश हो गया तो जल थोड़ा ठंडा लग रहा है, और काल वही जल आपको कैसे लगेगा, तो गर्मी हो जाए तो ठंडी जल बहुत अच्छा लगता है। तो केवल मात्रा के अनुभव है, ये मन की संजोग है, इसलिए मन को उस परम पुरुष को दे दीजिए, सबकी कल्याण होगा। वो यही कल्याण की कामना कौन कर रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान। वो पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करे, ओत्कात्मतम महात्मनि आशा से, यही आशा में रखता हूँ, इनकी अपमान उनके सम्मान से मेरे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे तो एकमात्र है इच्छा है सुहृदम सर्वभूतानम, कि सभी जीव की जो हितैषी हैं उनके साथ सबके संबंध हो जाए हैं, और सबके साथ होने से सबके विकास होता है। हमारी सरकार का भी यही नीति है, सबके साथ सबकी विकास, लेकिन सबके साथ देने वाले भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञान अपहरण। भगवान कहते मैं सब जगह हूँ, सबके हृदय में हूँ, बाहर में भी हूँ, और मैं सबकी पोषण भी करता हूँ, भरण भी करता हूँ। गतिरि भर्ता प्रभु साखी निवासं शरणं श्रुत, मैं सबकी हितैषी होने के कारण मैं उनकी गति देने वाले हूँ, मैं उनकी भर्ता भी हूँ, भरण करने वाले। तो इसलिए यही कामना के साथ हमारे कृष्ण भवनामृत संघ के संस्थापक सबको कृष्ण को देने के लिए पूरे विश्व में परिव्राजन किए, क्योंकि कृष्ण ही वही भक्तों की धन है। कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पार तुमार सकती अच अमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धान तब पाचे पाचे। तो मन को कांगाल बना करके ऐसे भक्तों के पीछे दौड़ने से वा उनकी परिचर्या रता हाँ, जो इसी प्रकार भगवान की सेवा में लगे हैं उनकी थोड़ा सेवा मिल जाए तो हमारी जीवन की बेड़ा पार हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम।